بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرہ زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتاؤ، میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہمارا پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ہے hindi@wsis.irib.ir۔ شوتاؤ، آج سوموار ہے، آبان کی 9، ربیع الثانی کی 5 اور اکتوبر کی 31 تاریخ۔ اس سمے کی سبھا میں آپ سب سے پہلے وشو سماچار سنیں گے، جس کے بعد کاریکرم راجنیتک چرچا آپ کی سیوا میں پرستت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے ساپتاہک کاریکرم وشو درپن، اور شوتاؤ سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا صحت کا راز۔ تو یہ ہے اس سمے کی سبھا میں پرستت کی جانے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا۔ آپ سے کچھ دیر بعد آپ سنیں گے انتراشٹریہ سماچار۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ لیجیے شروتاؤ، اب مریم مہردادی اور احمد عباس سے سنیے وشو سماچار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ شیراز آتنکی حملے سے جڑے 6 آروپی دھرے گئے ہیں۔ راشٹرپتی رئیس نے کہا ہے کہ سرکشا ایرانی سرکار اور جنتا کی ریڈ لائن ہے۔ بھارت کے گجرات میں موربی برج کی گھٹنا کے بعد کئی طرح کی بحثیں شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب نے 15 راجنیتک قیدیوں کو موت کی سزا سنا دی ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اور اب آپ وسطار سے سماچار سنیے۔
ایران کے انٹیلیجنس منترالے نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے مزار پر آتنکی حملے سے جڑے 6 آروپی گرفتار کیے گئے ہیں۔ انٹیلیجنس منترالے نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ یہ لوگ آتنکی حملہ کرنے والی ٹیم کے لیے فیسیلیٹیٹر کے روپ میں کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے حملے سے جڑے دوسرے آروپی کی گرفتاری کی خبر آئی تھی، اور اب انٹیلیجنس منترالے کا بیان آیا ہے کہ اس حملے کے معاملے میں 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو فیسیلیٹیٹر کے روپ میں کام کر رہے تھے۔ منترالے نے بیان میں کہا ہے کہ بہت جلد اس بارے میں ادھک بیورہ دیش کی جنتا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ شیراز میں پیغمبر اسلام کے ونشج حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے روضے پر بدھوار کو آتنکی حملہ ہوا تھا، جس میں بچوں سہیت 15 لوگ شہید ہو گئے تھے اور درجنوں گھائل ہوئے تھے۔ یہ حملہ تب ہوا تھا جب ایران کے بھیتر ہنگامے ہو رہے تھے اور پشمی دیشوں سے جڑے راجنیتک و پرچارک حلقے ہنگاموں کو ہوا دینے اور ہنسا پھیلانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے۔
ایران کے راشٹرپتی نے دیش کی سرکشا اور شانتی کو شہید آرمان الوردی جیسے درجنوں اور سینکڑوں شہیدوں کے بلیدان اور خون کا پریمام بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سرکشا اور شانتی ایران سرکار اور راشٹر کی ریڈ لائن ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق اسلامی گنراج ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے شہید آرمان الوردی کے پریوار والوں سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے شہید آرمان الوردی کے پریوار والوں کے پرتی اپنی سانتونا پرکٹ کی، اور انہوں نے مہان شہید کی ویرتا اور انتردرشٹی کی پرشنسا کی۔ राष्ट्रपति रईस ने इस मौके पर कहा कि शहीद अलवर्दी जैसे जाबाज जवान की शहादत देश की सुरक्षा और शांति के लिए बलिदान का प्रतीक है और देश की जनता ऐसे संघर्षकर्ता जियालों के बलिदान का सम्मान करती है और उनकी कुर्बानी के महत्व को समझती है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनआनी ने ईरान के शिराज नगर में हजरत शाह चिराग के मजार पर होने वाले आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग खुद को गार्डन का निवासी और दूसरों को जंगलवासी कहते हैं इस जघन्य अपराध पर खामोश तमाशाई बन गए हैं। नासिर कनआनी ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में कहा कि बाग में जीवन गुजारने के दावे करने वाले अब आतंकी हमले महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार और बाल अधिकार पर खामोश हो गए हैं और बड़ी आसानी से इतने बड़े अपराध को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। कनानी ने कहा कि ये लोग बस इसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि हिंसा और दंगे भड़काएं, इसके अलावा वे बड़ी से बड़ी घटना पर भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आतंकवाद से जंग में शहीद कासिम सुलेमानी की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि अगर दाइशी आतंकवाद से जंग में इस महान कमांडर ने अपनी भूमिका न निभाई होती तो मानवाधिकार के बड़े बड़े दावे करने वाले देश आज तक इस आतंकी संगठन से जूझ रहे होते।
भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात में मोरबी ब्रिज गिर जाने की दुखद भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात में मोरबी ब्रिज गिर जाने की दुखद घटना में 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और अब इस पर कई तरह की बहसें शुरू हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस मामले में क्या कोई कसूरवार है या नहीं, और अगर है तो वो कौन है। बहस यह है कि इसके लिए दोषी ओरेवा ग्रुप है जिसे ब्रिज की मरम्मत और रखरखाव का काम सौंपा गया था, या इसमें नगर पालिका की गलती है। मोरबी के ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत और रखरखाव का काम मोरबी के औद्योगिक घराने ओरोवा ग्रुप को सौंपा गया था। यह समूह अजंता ब्रांड की घड़ियों का निर्माण करता है। इसके अलावा बल्ब, लाइटें और घरेलू इस्तेमाल के अन्य उपकरण भी बनाता है। इस समूह और मोरबी नगर पालिका के बीच 300 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध हुआ है। 4 पेज के अनुबंधन समझौते के मुताबिक दोनों पक्षों में पुल के प्रबंधन जैसे की OM ऑपरेशन और मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सफाई, रखरखाव, भुगतान संग्रह, स्टाफिंग आदि का अनुबंध हुआ था। एग्रीमेंट में कलेक्टर नगर पालिका और ओरोवा समूह द्वारा पुल पर जाने की दर और 2027 से 28 तक उस दरों में वार्षिक कितनी बढ़ोतरी की जाएगी उसका विवरण भी दिया गया है। इसके अनुसार वर्तमान टिकट पर 15 रुपये है जो वर्ष 2027 से 28 तक 25 रुपये तक बढ़ाया जाना है।
सऊदी अरब के अधिकारियों ने 15 राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा सुनाई है जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल बताए जाते हैं। यूरोप में स्थित सऊदी अरब मानवाधिकार संगठन ने यह सूचना दी। सऊदी अरब का रिकॉर्ड इस मामले में खराब है जो हर साल अनेक महिलाओं और बच्चों को भी मौत की सजा देता है। सऊदी अरब मानवाधिकार संगठन के हवाले से मीडिया में ये खबर आई है कि इस समय सऊदी अरब में कम से कम 53 कैदी ऐसे हैं जिन्हें कभी भी मौत के घाट उतारा जा सकता है और इनमें कम से कम 8 किशोर हैं। संगठन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि दर्जनों लोगों की मौत की सजा देने के फैसले से बाज आ जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने भी हाल ही में सऊदी अरब के अधिकारियों पर जोर डाला है कि वे अब्दुल्ला हुवैती को तत्काल रिहा करें और किशोरावस्था में लगाए गए आरोपों के आधार पर उन्हें सुनाई गई मौत की सजा भी निरस्त करें। इन विशेषज्ञों ने सऊदी अरब से कहा है कि वे किसी भी अपराध में नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा का प्रावधान खत्म करें। बताया जाता है कि सऊदी अरब में मौत की सजा पाने वाले किशोरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
फिलिस्तीन के प्रतिरोधक बलों के जियालों की जवाबी कार्रवाई से डरे इसराइली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अवैध जानी कॉलोनी वासियों को कनेसेट चुनाव के दिन अपने साथ हथियार ले जाने के लिए कहा है। हिब्रू भाषा के समाचार सूत्रों ने रविवार को पूर्वी अधिकृत बैतुल मुकद्दस और अरिया इलाके में 2 फिलिस्तीनियों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 2 अवैध जानी कॉलोनी वासियों के घायल होने की सूचना दी है। इस बीच प्रतिरोधक बलों के जियालों द्वारा हालिया दिनों में लगातार की जाने वाली शहादत प्रेमी कार्रवाइयों से भयभीत इसराइली सुरक्षा एजेंसियों ने कनेसेट चुनाव के लिए चेतावनी जारी की है।
यूक्रेन के सरकारी सूत्रों का कहना है कि रूस ने कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है जिसमें राजधानी कीव भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि मिसाइल हमलों में कीव, खारकीव, वेनेत्सा, शिरकासी और
ज़ापोरोजिया को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कोलिबा ने कहा कि रूस के हमलों में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि रूस ने कई इलाकों में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने फायर किए गए 50 में से 44 मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए। यूक्रेन पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका की विस्तारवादी नीति का हथकंडा बनकर बुरी तरह युद्ध में फंस गया है। अमेरिका के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होकर यूक्रेन की सरकार ने अपने देश को जंग की आग में झोंक दिया, जिसकी विभीषिका अब साफ नजर आने लगी है। वहीं रूस का कहना है कि यूक्रेन उन इलाकों पर हमले कर रहा है जो रूस का हिस्सा बन चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन की फोर्सेज ने खेरसून, खार्किव और लोगांस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। रूसी सेना का कहना है कि उसने दोनेस्क में महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जबकि यूक्रेन की सेना का एक शस्त्रागार तबाह कर दिया है।
रूस के विदेश मंत्रालय के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम तनाव कम करने के लिए पश्चिम के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। लावरोफ ने कहा कि एक विशेष रूप से राष्ट्रपति पुतिन अभी भी यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत में शामिल होने के इच्छुक हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अपने बयान में यह भी दावा किया है कि ये प्रस्ताव नया नहीं है। सरगेई लावरोफ ने यह भी कहा कि अगर वार्ता अच्छे वातावरण में समानता और वास्तविकता पर आधारित हो तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने हल्की मार्जिन से याइर बोलसोनारो को पराजित कर दिया है। ब्राजील में चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार डी सिल्वा को 50.8% और बोलसोनारो को 49.2% वोट मिले हैं। दक्षिणपंथी विचार के बोलसोनारो के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो गई है, क्योंकि वे इस देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं चुने गए। साओ पाउलो में विजय भाषण देते हुए लूला डी सिल्वा ने अपने दसियों हजार समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब तक बोलसोनारो ने फोन करके मुझे मुबारकबाद नहीं दी, मुझे नहीं पता कि वे मुझे फोन करेंगे या नहीं। लूला डी सिल्वा ने कहा कि देश को शांति और एकता की जरूरत है और देश अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लौट रहा है। हम नहीं चाहते कि देश अलग थलग रहे। उन्होंने कहा कि ये तो किसी के भी हित में नहीं है कि लोग विभाजित समाज में जीवन गुजारें और हमेशा जंग होती रहे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। दुनिया में सबसे अधिक तेल के मालिक देश ने अपने पड़ोसी देश का तेल चुराना शुरू कर दिया है। अमेरिका का मानना है कि सऊदी अरब में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। गुजरात के मोरबी केबल ब्रिज हादसे में दसियों की मौत हुई है। दोस्तों, इन विषयों पर कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की जाएगी। विश्व का सबसे अधिक तेल का स्वामी देश, संसार के सबसे गरीब देश का तेल चुराने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हैं रविश जैदी।
यमनी सेना ने अज़ब्बे बंदरगाह को ड्रोनों से निशाना बनाया है। इस हमले का उद्देश्य सऊदी अरब को यमनी तेल की चोरी से रोकना है। वर्षों से ये बात यमनी कहते आए हैं कि अगर सऊदी अरब हमारे हिस्से का तेल चोरी ना करे तो हम देश के कर्मचारियों के वेतन का बजट आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। इस बीच सुरक्षा परिषद ने यमनी ड्रोनों द्वारा तेल समृद्ध बंदरगाह पर किए गए हमले की आलोचना की है, जबकि इस परिषद ने सऊदी अरब द्वारा यमनियों का तेल चुराए जाने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। यमनी पत्रकार तालिब अल हसनी का कहना है कि यमन संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। इस संघ ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे न्यायपूर्ण कहा जा सके। यहाँ तक कि यूएन युद्ध विराम को लागू करने के लिए हमलावर सऊदी गठबंधन को बाध भी नहीं कर सका। आश्चर्य की बात यह है कि हमलावर सऊदी गठबंधन एक ओर जहां यमन के ऊर्जा संसाधनों की लगातार चोरी कर रहा है, वहीं ऐसे सभी मालवाहक जहाजों को भी रोक रहा है कि जिनको स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमिट जारी किया है। यमन नेशनल ऑयल कंपनी के निदेशक अम्मार अल अज़रही बता रहे हैं कि तेल की कमी की वजह से आम जनता समस्याओं से जूझ रही है। 24 घंटे लाइनों में लगना पड़ रहा है। अल अज़हरी कहते हैं कि हमलावर सऊदी गठबंधन द्वारा यमनी जनता पर किए जा रहे अत्याचारों की ये एक छोटी सी मिसाल है जिसमें सऊदी अरब यमनी जनता के अधिकारों की चोरी कर रहा है। इसी तरह खाद्य पदार्थों से भरे हाईवों पर खड़े हजारों ट्रक तेल न मिलने के कारण रास्ते में फंसे हुए हैं। यमन नेशनल ऑयल कंपनी के निदेशक संयुक्त राष्ट्र संघ के परमिट की कॉपी दिखाते हुए कहते हैं कि तेल के दो ऐसे जहाजों को सऊदी अरब ने रोका है कि जिनके पास यूएन द्वारा दिया गया लाइसेंस है। अब इन जहाजों को हमलावर सऊदी गठबंधन जीजान बंदरगाह स्थानांतरित कर रहा है। इस बीच सुरक्षा परिषद यमनी सेना की जवाबी कार्रवाइयों की निंदा ऐसी स्थिति में कर रहा है कि जब सऊदी अरब वर्षों से यमन के तेल की चोरी करके बाजार में बेच रहा है और अपने खजाने को चोरी के पैसों से भर रहा है। रियाज द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति परिषद के सदस्य सुल्तान अल ओरादा बताते हैं कि बेचे जाने वाले यमनी तेल के पैसों को सऊदी अरब के अल अहली बैंक में जमा किया जाता है।
अमेरिका अब भी इस बात पर अड़ा है कि सऊदी अरब में मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
अमेरिका में सऊदी अरब की राजदूत रीमा बिनते बंदर आल सऊद ने सीएनएन से साक्षात्कार में कहा है कि सऊदी अरब में जो सुधार कार्य हो रहे हैं वे वास्तविक हैं और सऊदी अरब ने गत 5 वर्षों के दौरान जो कार्य किए हैं उसे गत 80 सालों में अंजाम नहीं दिया गया है। इस बयान की प्रतिक्रिया में यूरोपीय और सऊदी अरब के मानवाधिकार संगठनों व संस्थाओं ने सऊदी युवराज के सुधार कार्यक्रमों को झूठ बताया है। मोहम्मद बिन सलमान वर्ष 2017 में सऊदी अरब के युवराज बन गए। बिन सलमान ने पिछले 5 वर्षों के दौरान सामाजिक स्तर पर कुछ सीमितताएं खत्म कर दी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सऊदी अरब की महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी। इसी प्रकार उन्होंने कंसर्ट आयोजित करने और स्टेडियम में जाकर फुटबॉल देखने की भी अनुमति दे दी। बिन सलमान ऐसी स्थिति में इन कार्यों को सुधार का नाम दे रहे हैं जब इनमें से कुछ कार्यों को हर नागरिक का प्राथमिक अधिकार समझा जाता है। साथ ही सऊदी युवराज ने महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी अंजाम नहीं दिया। महत्वपूर्ण विषय यह है कि राजनीतिक टीकाकार बिन सलमान को न केवल सुधारक नेता नहीं मानते बल्कि उन्हें मानवाधिकारों का असली हननकर्ता मानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस देश में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सऊदी अरब एक रूढ़िवादी देश में परिवर्तित हो जाएगा। बाइडन के इस बयान का मूल कारण यह था कि सऊदी अरब की तानाशाही सरकार खुल्लम खुल्ला मानवाधिकारों का हनन करती है। इस आधार पर सुधार पर आधारित सऊदी युवराज के दावे को रियाज के करीबी घटक भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रोचक बात यह है कि सऊदी युवराज ने सामाजिक स्तर पर जहां कुछ सीमितताओं को खत्म कर दिया है, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में कुछ सीमितताओं में वृद्धि भी कर दी है। सऊदी अरब में खुद इस देश के नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। मिसाल के तौर पर शिया मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है। इसी प्रकार शियों पर निराधार आरोप लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। आज आधिकारिक तौर पर पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि कितने शिया सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं। पिछले मार्च महीने में 81 शिया जवानों को सऊदी अरब में फांसी दे दी गई थी। जिन जवानों को फांसी दी गई उन पर आतंकवादी कार्रवाइयों में लिप्त होने का निराधार आरोप लगाया गया था और सऊदी अरब की सरकार ने अपने निराधार व मनगढ़ंत दावों को सिद्ध करने के लिए आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया। सोचनीय बिंदु ये है कि मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले अमेरिका और उसके पिछले उद्देश्य व शक्तियों ने पूरी तरह अर्थपूर्ण चुप्पी साध ली। ये वे देश व शक्तियां हैं जो अगर ईरान में एक जवान लड़की मर जाती है तो जमीन आसमान एक कर देती है और ऐसा दुष्प्रचार करती है कि जैसे ईरान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि खुद अपने और अपने पिछले उद्देश्यों में बड़े से बड़ा मानवाधिकारों का हनन होता है और लोगों के सिर कलम किए जाते हैं। वहाँ ये देश और शक्तियां पूरी तरह अर्थपूर्ण चुप्पी साध लेते हैं। इन देशों को बहुत अच्छी तरह पता है कि ईरान में मानवाधिकारों का हनन नहीं होता है। वे अपने कृत्यों से आम जनमत का ध्यान भटकाने के लिए ईरान में मानवाधिकारों के हनन का राग अलापते हैं। बहरहाल सऊदी अरब में मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है वो बड़ी शक्तियों और उसके आकाओं के समर्थन व आशीर्वाद का परिणाम है।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने केबल पुल के गिर जाने के मामले में 9 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। कल केबल ब्रिज हादसे में कम से कम 134 लोग मारे गए। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने हैंगिंग पुल के रविवार शाम अचानक टूट जाने से एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 141 लोगों के हताहत होने का समाचार है। 140 साल से अधिक पुराने अंग्रेज युग में बना ये पुल मरम्मत के लिए लगभग 7 महीने तक बंद रहने के बाद 5 दिनों पहले ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस भयावह दुर्घटना के बाद राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें एनडीआरएफ और वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। अब तक 177 लोगों को बचाया जा चुका है और लापता लोगों की तलाश जारी है। रविवार की शाम इस पुल पर उस समय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 500 लोग उपस्थित थे। ये संख्या पुल की क्षमता से कई गुना अधिक थी। बहुत से लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। 765 फुट लंबा ये हैंगिंग पुल 1880 में बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो गुजरात के दौरे पर हैं, इस दुर्घटना पर दुख प्रकट किया और कहा कि राहत और बचाव का कार्य कल से जारी है और केंद्र सरकार इस संदर्भ में राज्य सरकार को हर प्रकार की सहायता दे रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य गृह मंत्री के साथ दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गैर इरादतन हत्या के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पुल के टूटने के कारणों का पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस पुल के रख रखाव की जिम्मेदारी निभा रही ओरेवा कंपनी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी गतिविधियां जारी हैं, लेकिन इस दुर्घटना के बाद सारी रैलियां और अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने भी अपना रोड शो स्थगित कर दिया है और वे कल दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने यद्यपि कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री के उस वीडियो क्लिप को जारी किया है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में गिरने वाले फ्लाईओवर को एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। कांग्रेस ने सवाल किया है कि अब गुजरात में होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण। विश्व दर्पण। दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम यूक्रेन युद्ध और ड्रोन के क्षेत्र में ईरान की ऊंची उड़ान के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति की महान सफलता के बाद से ही लगातार इस्लाम दुश्मन साम्राज्यवादी शक्तियां ईरानी राष्ट्र के खिलाफ साजिशें रचने में व्यस्त हैं। साथ ही दुनिया का शायद ही कोई भी प्रतिबंध होगा जो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर न लगाया हो, लेकिन इन सब के बावजूद आज ईरान विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरी दुनिया आसमान में उड़ते ईरानी ड्रोन की ताकत मानने के लिए मजबूर है। ईरान के ड्रोन विमान इस समय पश्चिमी मीडिया में, खासतौर पर विश्व मीडिया में भी काफी हद तक सुर्खियों में छाए हुए हैं। मीडिया में यह हंगामा है कि ईरानी ड्रोन यूक्रेन युद्ध में रूस का बेहद खतरनाक हथियार साबित हो रहे हैं और उसने अचानक इस युद्ध में रूस को बड़ी मजबूती दी है, जबकि ईरान ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया है कि न वो युद्ध का पक्षधर है और न ही उसने यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन और मिसाइल दिए हैं। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान ने स्वयं इस संबंध में साफ साफ बताया है।
मैं मायलम ताकीद बकनम के इत्तेहामात बी असास बरखी कशवरहा दर मोरद इस्तेफादे रूसिये अज पहबादहाय ईरानी दर जंग अलैह उक्रेन रो कवियन रद मिकनीम।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ संयुक्त बैठक में ड्रोन की बिक्री के दावे की समीक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए हमने रूस को किसी भी तरह के ड्रोन और हथियार नहीं दिए हैं। वहीं अगर बात करें यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति के बारे में, तो इस समय अमरीका समेत लगभग सभी पश्चिमी देश यूक्रेन की हर तरह की सहायता कर रहे हैं। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि आज दुनिया जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की भड़कती हुई आग देख रही है, वो आग लगाई हुई भी अमेरिका और यूरोपीय देशों की है। लेकिन जब वो इस युद्ध में अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब अलग अलग तरह के नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध के आने वाले दिनों में क्या परिणाम निकलने वाले हैं, इस बारे में विश्व भर में घटने वाली घटनाओं पर बारीकी से नजर रखने वाले प्रोफेसर मुक्तदर खान बता रहे हैं।
जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग हो रही है, उसके उसका जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका جو گلوبل نتائج ہیں وہ کیا ہیں جو اہم ہیں جس سے جیو پولیٹیکل سسٹم انٹرنیشنل سسٹم پہ اثر ہو رہا ہے اور ایک میجر شفٹ ہو رہا ہے گلوبل بیلنس آف پاور میں, گلوبل سسٹمز میں, گلوبل ٹریڈنگ جو فائنینشیل سسٹمز ہیں, میکینزم, ان ساروں میں تبدیلی آ رہی ہیں اس جنگ کی وجہ سے. اور یہ جنگ جو تقریباً اب 7 مہینے سے زیادہ, 8 مہینے سے زیادہ سے چل رہی ہے, اس کے کیا گلوبل کانسیکوینسز ہوں گے. سو پہلا نتائج یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے ایسکلیشن بڑھ گیا ہے, اور یہ ایسکلیشن ایسی نوعیت تک پہنچ گیا ہے, ایسے اسٹیٹ تک پہنچ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رشیا مجبوراً نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کرے. پھر سوال اٹھتا ہے اگر رشیا نیوکلیئر ویپنز استعمال کر لیتا ہے یوکرین میں تو ویسٹرن ممالک, خاص طور سے امریکہ, کیسے جواب دے گا. امریکہ کے ایک جنرل پیٹریاس جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر بھی تھے اور امریکن فوجوں کے کمانڈر بھی تھے خاص طور سے عراق میں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر رشیا نیوکلیئر ویپنز استعمال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ رشیا کی ساری فوجیں جو یوکرین میں ہیں اور ساری نیوی جو بلیک سی میں ہے اس کو ڈبو دے گا اور فوجوں کو تباہ و برباد کر دے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیٹو یا امریکہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کرے گا جواب میں, لیکن پچھلے 3-4 دنوں میں جو جنگ میں ایسکلیشنز آئے ہیں, رشیا نے جو 4 پروونسز کو اینیکس کر لیا ہے, یعنی قانوناً انہیں رشیا کا حصہ بنا لیا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یوکرین اب وہ حصوں کو واپس لینے کی کوشش کرے گا تو ایسا لگے گا جیسا کہ وہ رشیا کے اوپر حملہ کر رہا ہے, کیونکہ وہ ٹیریٹریز اب رشین ٹیریٹریز ہے, یوکرین نہیں ہے جہاں تک کہ رشیا کا سوال ہے. تو رشیا سیلف ڈیفنس کر رہا ہوگا اگر وہ ڈونیس اور خرسون کو ڈیفینڈ کرتا ہے فرام یوکرینین فورسز. ایک بڑی تبدیلی جو آئی ہے پچھلے کہیے 1-2 ہفتوں میں یہ ہے کہ رشیا نے جو فوجیں موبیلائز کی ہیں, اس سے پہلے رشیا جو یوکرین میں کر رہا تھا وہ ایک اسپیشل ملٹری آپریشنس تھا, اب باقاعدہ جنگ ہو گیا ہے اور رشیا اپنی پوری قوت استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور تقریباً 3 لاکھ ایکسٹرا سولجرز کو وہ ریکروٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोल कर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण. हर हफ्ते सोमवार को वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में जब अमेरिका और यूरोपीय देश मास्को के मुकाबले में कमजोर पड़ते जा रहे हैं तो उन्होंने ईरान की ओर रुख कर लिया है और ईरान पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय देशों की ओर से ये आरोप लगाया जाना कि ईरान रूस को ड्रोन दे रहा है और ईरानी ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान किसी भी तरह के ड्रोन या हथियार रूस को नहीं दे रहा है. दूसरी बात यह है कि अब दुनिया ये मानने के लिए मजबूर हो गई है कि सैन्य शक्ति में ईरान एक बड़ा नाम हो गया है. वहीं कुछ टीकाकारों का यह भी मानना है कि अगर अमरीका और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार दे सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं दे सकता. भारत के प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ ओपी तिवारी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया में कुछ यूं कहते हुए नजर आते हैं.
देखिए, ये ईरान का ड्रोन है, बहुत घातक इसलिए है कि ईरान ने अपने रिक्वायरमेंट को इस ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है. इसको हमेशा यूएसए की 7th फ्लीट से हमेशा डर रहता था. तो ये जो है सस्ते ड्रोन है, इफेक्टिव ड्रोन है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. अब जहां तक सवाल है, देखिए अमेरिका नाटो सब अपना आर्म्स बेच रहे हैं यूक्रेन को, तो ईरान क्यों पीछे हटेगा. ईरान भी अपना बेचेगा, वो भी पैसा बनाएगा. ये जो इफेक्टिव है ये सस्ते हैं, नंबर ज्यादा है, क्वांटिटी है. ड्रोन का ऐसे ही होता है कि स्लो मूविंग टारगेट होता है, इजी टू इंटरसेप्ट, इजी टू गिराना आसान है. लेकिन ये ड्रोन जो काम करते हैं वो सरप्राइज और नंबर में काम करते हैं. भविष्य में लड़ाई सारी ड्रोन की होगी. ड्रोन का मेजर एडवांटेज ये है कि इसमें पैसा कम खर्च होता बनाने में, इक्विपमेंट ज्यादा है, यू कैन पिन पॉइंट टारगेट कर सकते हैं, किसी टाइम पर भी लॉन्च कर सकते हैं, मे बी 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. प्राइस एलिमेंट जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफेक्शन भी है, 5 इधर चले जाएंगे, 5 उधर चले जाएंगे, टारगेट पर कोई और जाएगा।
वहीं भारत के एक अन्य रक्षा विशेषज्ञ श्री घोष ईरान के ड्रोन की विशेषता बताते हुए कहते हैं,
ये जो आर्ष है ये काफी एडवांसमेंट है। जो शशि उसका रेंज ज्यादा था 2500 किलोमीटर, उसका स्पीड था 115, ये वाला देखिए इसका स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। तो इससे एक बड़ा जंप है और इससे मेरे ख्याल में रूस को एक एडवांटेज है।
वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों और दुनिया के अन्य देशों में लगातार दूरी आती जा रही है। इसकी क्या है वजह, इस बारे में प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
ऐसा लग रहा है कि वेस्ट और द रेस्ट में एक किस्म का डिवाइड आ गया है। खासतौर से इंडिया तो बीच में फंस गया है दोनों के बीच में, लेकिन अगर आप समरकंद में जो SCO की मीटिंग हुई थी उसमें साफ नजर आ रहा था कि पुतिन को वहां पे एक्सेप्ट किया गया। दुनिया वाकई दूसरी वेस्टर्न ममालिकों में तो पुतिन जा भी नहीं सकते अब, लेकिन वो समरकंद आए, वहां पे उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी मिला, उन्होंने दूसरे प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, वहां पे वो तकरीबन एज ए स्पेशल मतलब स्टार की तरह थे किस्म से वहां पर। तो एक दुनिया ऐसी है जहाँ पे पुतिन इज़ वेलकम और एक दुनिया ऐसी है जहाँ वो बिल्कुल ही वेलकम नहीं है। तो एक किस्म से डिवाइड हो रहा है उज़्बेकिस्तान में, समरकंद में एक भी वेस्टर्न मुल्क वहाँ ऐसा प्रीडोमिनेंट नहीं था जहाँ पे रशिया को एक्सेप्ट किया गया, वहाँ पे ईरान को भी एक्सेप्ट किया गया, ईरान अब मेंबर बन गया है SCO। तो ऐसा लग रहा है कि इस जंग की वजह से, रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से, जो वेस्ट और द रेस्ट के बीच में जो डिवाइड है वो बढ़ रहा है और साफ नजर आ रहा है कि वेस्टर्न ममालिक बातें तो करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, लेकिन वो ऐसे पॉलिसीज को एडवांस करते हैं और दूसरे मुल्कों पे थोपने की कोशिश करते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट का फायदा हो और रेस्ट का नुकसान हो।
बहरहाल यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है और कहीं से भी इसका अंत होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं ये युद्ध दुनिया को भी धीरे धीरे बांट रहा है, जबकि ईरान ने हमेशा ये कहा है कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है और ईरान कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है। हालांकि जो देश दुनिया भर में युद्ध की आग भड़काते हैं वही अब ईरान में दंगों की आग भड़का रहे हैं, साथ ही ईरान पर रूस को ड्रोन देने का आरोप भी लगा रहे हैं। इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि जब अमरीका और कुछ पश्चिमी देशों की ईरान के खिलाफ हर चाल नाकाम हो गई तो अब उन्होंने दंगों और झूठे आरोपों का सहारा लिया है। वहीं साथ ही साथ ये मान रहे हैं कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है। कुल मिलाकर जमाना बदल रहा है और दुनिया का नेतृत्व संभालने वाली ताकतें भी बदल रही हैं। कौन सोच सकता था कि 4 दशक से अधिक समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाकाबंदी और गंभीर पाबंदियां झेल रहा ईरान रक्षा उद्योग में इतना आत्मनिर्भर हो जाएगा कि रूस जैसे देश को हथियार बेचेगा, 60% के ग्रेड तक यूरेनियम का संवर्धन करेगा, अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कार्यक्रम के अंत में इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई के उस बयान का उल्लेख करना उचित समझता हूं कि जिसमें उन्होंने देश के प्रतिभावान युवाओं से मुलाकात में कहा था कि जो लोग एक जमाने में ईरानी ड्रोन विमान की तस्वीरें देखकर मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये तो फोटोशॉप से तैयार की गई फेक तस्वीरें हैं, वही आज कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन बहुत खतरनाक हैं। तो दोस्तों कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، آپ نے سنا ہمارا ساپتاہک کاریکرم وشو درپن، اور اب پرستت کیا جا رہا ہے ہماری سمے کی سبھا کا انتم کاریکرم صحت کا راز۔
صحت کا راز۔
دوستوں، کارکرم صحت کا راز کی اگلی کڑی کے ساتھ اپستھت ہیں سواتی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کریں۔ آج ہم آپ کو لوک پریہ پھل کیلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔
دوستوں، آپ کو نشچت روپ سے بہت سے پھلوں کے بارے میں جانکاری ہوگی۔ ان پھلوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو کم لوگ جانتے ہیں، کنتو کچھ ایسے بھی ہیں جو وشو پرسدھ پھل ہیں۔ وشو پرسدھ پھلوں میں سے ایک ہی پھل کا نام ہے کیلا۔ اس کو انگریزی میں بنانا کہتے ہیں، جبکہ اس کا ویگیانک نام اسپینٹم موس ہے۔ وشو کے لگ بھگ ہر کھیتر میں یہ پھل اب پایا جاتا ہے۔
بہت سے وشیشجوں کا کہنا ہے کہ کیلا ایک ایسا پھل ہے جس کی پہلی بار کھیتی وشو میں ہوئی، ارتھات کھیتی کے ذریعے پیدا ہونے والا یہ پہلا پھل بھی ہو سکتا ہے۔ پراتتویدوں کا یہ ماننا ہے کہ 8000 سال عیسیٰ پور میں پاپوا نیوگینی میں اس کی کھیتی ہوتی تھی۔ کیلے کا پیڑ سامانیہ 3 میٹر تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے کافی لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں۔ کیلا ایک سوادشٹ پھل ہوتا ہے جس کو ہر آیو کے ورگ کے لوگ بڑے چاو سے کھاتے ہیں۔ کچی اوستھا میں کیلے کا رنگ ہرا ہوتا ہے، لیکن پکنے کے بعد اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے پیلے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا گودا سامانیہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ کیلے کو ادھکتر کچا ہی پیڑ سے توڑ لیا جاتا ہے اور اس کو بھوسے یا بھوسی میں چھپا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ پک جائے، کنتو آج کے زمانے میں کیلے کو پکانے کے لیے رسائن کا پریوگ کیا جاتا ہے۔
وشو کھاد سنگٹھن کی رپورٹ کے انوسار کیلے کی لگ بھگ 1000 قسمیں موجود ہیں۔ کہتے تو یہ ہیں کہ کیلے کا مول استھل ہمالیہ کا نکٹ ورتی شیتر ہے، جو لگ بھگ 1000 میٹر کی اونچائی پر پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سمے یہ پھل اپنی وشیشتا کے کارن پوری دنیا میں سرلتا سے اپلبدھ ہے۔ وشو کے کئی دیشوں میں اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہے۔ سامانیتا کیلا ٹراپیکل ریجن شیتروں میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایران کے دکشنی شیتروں میں کیلے کی کھیتی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کا ویاپار وشو استر پر کیا جاتا ہے۔
وشو میں کیلا پیدا کرنے میں بھارت سب سے اگرنی دیش ہے۔ وہاں پر ہر سال 30 ملین ٹن سے ادھک کیلا پیدا ہوتا ہے۔ اس حساب سے پورے وشو میں جتنا بھی کیلا پیدا ہوتا ہے اس کا 28% بھاگ بھارت میں پیدا ہوتا ہے۔ بھارت کے بعد چین وہ دوسرا دیش ہے جو 13 ملین کی پیداوار کے ساتھ دوسرے استھان پر ہے۔ چین کے بعد انڈونیشیا وشو کا تیسرا دیش ہے جو ہر سال 7 ملین کیلے کی پیداوار کرتا ہے۔ بھارت، چین، انڈونیشیا ویسے تو وشو میں کیلا پیدا کرنے والے 3 بڑے دیش ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے دیش بھی ہیں جو بڑے پیمانے پر کیلے کا نریات کرتے ہیں، جیسے فلپین، یوگانڈا، ایکواڈور، برازیل، تنزانیا، انگولا اور میکسیکو اتیادی۔ ایران میں سستان و بلوچستان و پرانت ہے جہاں پر کیلے کی کھیتی کے لیے پریاپت جلوایو پائی جاتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ دیش میں سب سے ادھک کیلے کی کھیتی اسی کھیتر میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایران میں ہرمزگان و پرانت ہے جہاں پر اس کی پیداوار ہوتی ہے۔
کیلے میں بہت ادھک پوشن تتو پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو ماس اور آلو سے بھی ادھک پوشٹک مانتے ہیں۔ پرتی 100 گرام کیلا 100 کیلوری پیدا کرتا ہے۔ کچے کیلے کی تلنا میں پکا ہوا کیلا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ केला एक ऐसा फल है जो विटामिन से भरपूर होता है। यही कारण है कि वे लोग जो अधिक शारीरिक और मानसिक काम करते हैं उनको केले खाने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार से बच्चों और वृद्ध लोगों को भी इस फल को खाने की अनुशंसा की जाती है। केले के भीतर बहुत से रसायन पाए जाते हैं।
100 ग्राम केले में पानी के अतिरिक्त 300 यूनिट विटामिन ए, 4 से 5 ग्राम स्टार्च, लगभग 19 ग्राम चीनी, 1.1 ग्राम प्रोटीन, 28 मिलीग्राम फास्फोरस, 19 मिलीग्राम कैल्शियम, 400 मिलीग्राम पोटेशियम, 14 मिलीग्राम विटामिन बी, 18 मिलीग्राम विटामिन B2 और 8 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त केले में आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन, टैनिन, पेक्टिन और फाइटिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बूंदों और गोलियों के रूप में तैयार किया जाता है ताकि इनसे लाभ उठाया जा सके।
दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केले को कुछ समय तक रखने की स्थिति में इसमें पहले हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, बाद में ये धब्बे गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में केले के भीतर शर्करा बहुत अधिक बढ़ जाती है। केले को अगर अधिक समय तक नहीं रखा जाता तो इसका मज़ा मीठा और आनंददायक होता है। शोध से ये बात पता चली है कि जैसे जैसे केला पकता जाता है उसी हिसाब से उसके भीतर पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हरे रंग के छिलके वाले केले की तुलना में वे केले जिनके छिलके पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं वे शरीर की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में 8 गुना अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।
अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि सफेद रक्त कोशिकाएं बैक्टीरिया, वायरस और बीमारियों को पैदा करने वाले अन्य रोगाणुओं से लड़ते हैं। उपचारी गुणों की दृष्टि से केला एक पौष्टिक फल है जो जल्द ही हजम हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केला फाइबर से भरपूर होता है। वे ये कहते हैं कि शरीर का वजन कम करने में केला प्रभावी होता है। उनके अनुसार एक केला व्यक्ति की दैनिक फाइबर की जरूरत का 10% भाग पूरा करता है। केले को वजन घटाने में इसलिए प्रभावी माना गया है क्योंकि यह किसी हद तक भूख को कम करता है और पेट को भरे रखता है।
केले में पाया जाने वाला विटामिन B6 टाइप 2 मधुमेह से बचाव करने और वजन कम करने में सहायक सिद्ध होता है। केला सूजन को भी कम करता है और तंत्रिकाओं को मजबूत करके सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के बढ़ने में मददगार बनता है। ये सारी बातें इसलिए होती हैं कि केले में विटामिन B6 उच्च स्तर का होता है। यही विटामिन नींद लाने में भी सहायक बनता है। केले में पाया जाने वाला मैग्नीशियम शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। केले की एक विशेषता ये भी है कि वो अवसाद पर नियंत्रण पाने में प्रभावी रहता है।
केला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। केले को दिल के लिए भी अच्छा फल बताया गया है। पोटेशियम से भरपूर केला शरीर में ऊर्जा का सही ढंग से संचालन करता है। एक स्वस्थ जीवन गुजारने के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। केले की एक विशेषता यह है कि इसके भीतर पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है जबकि सोडियम की मात्रा कम होती है। कहते हैं कि ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर के समय यह फल हृदय की रक्षा करने में सहायता करता है।
दोस्तों, ये भी कहते हैं कि केला खाने से खांसी और गले की खराश में राहत मिलती है। शरीर के विकास और शरीर की तंत्रिकाओं को संतुलित करने में केले का प्रभाव देखा गया है। कमजोरी की स्थिति में अगर शहद के साथ केले का सेवन किया जाए तो ये अधिक लाभ पहुंचाता है। केले को मधुमेह के रोगियों को न देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके भीतर शर्करा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अधिक केला खाने से शरीर में खुजली और एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। अधिक केले का सेवन अपच का कारण भी बन सकता है।
केले की जड़ का स्वाद कसैला होता है, लेकिन यह पेट के कीड़ों को निकालने में मदद करता है। केले के पौधे के तने का रस मूत्रवर्धक होता है। इसके गोंद को पानी में मिलाकर पीने से दस्त रुक जाते हैं। हिस्टीरिया या मिर्गी जैसी बीमारियों के उपचार में भी केले का प्रयोग देखा गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केले को दूध के साथ पिया जाता है, जिसे बनाना शेक भी कहते हैं। पके हुए केले के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उनको केक और पेस्ट्री पर सजाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे उसके स्वाद में वृद्धि हो जाती है।
जिन क्षेत्रों में केला अधिक पैदा होता है, वहाँ पर कच्चे केले की सब्जी भी बनाई जाती है। वहाँ पर पके हुए केले को सुखा कर भी प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केला उन स्वादिष्ट फलों में से एक है, जिसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है। बहुत से गुणों का ये खजाना है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तरह केले को भी सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर अधिक केला खा लिया जाए तो इससे नुकसान भी हो सकता है।
दोस्तों, केले की अपनी इन सारी विशेषताओं के बावजूद इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यह फल कभी भी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे। कार्यक्रमों के बारे में आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। तो श्रोता, इसी के साथ हमारी सभा संपन्न होती है। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।